यमुनोत्री से निकली अपनी पावनता साथ लेकर। सूर्य की बेटी, यमराज की बहन, ऋषि मुनियों ने पूजा जिसे, भगवान श्री कृष्ण के पैरों को चूमा जिसने, अपनी पवित्रता पर इतराती, निर्मल शुद्ध साफ कलकल बहती चली उत्तराखंड से होती हुई फिर हरियाणा और जा पहुंचती है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां सूर्य की शुद्ध बेटी बन जाती है यमराज की काली और भयानक बहन। अपनी पवित्रता पर इतराने वाली अब शर्मिंदा है अपने हालात पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की। मैं हूँ अनुराग और मेरे साथ है स्वाति।
हम स्वागत करते हैं आपका अपना कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में।
और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण समस्या पर, जो है यमुना की बदलती तस्वीर दिल्ली में।
देश की दूसरी सबसे बड़ी पूजनीय नदी और 5,70,00,000 दिल्ली वासियों का अकेला पीने की पानी का जरिया आज दिल्ली के लिए कूड़ेदान बन गया है।
दिल्ली में आगमन से पहले हमारी यमुना नदी उतनी गंदी नहीं होती है जितना उसे गंदा बना रही है 42 इंडस्ट्रीज, जिसका अनट्रीटेड वाटर मिला दिया जाता है यमुना में।
सिर्फ इंडस्ट्रीज का ही नहीं, घरों का, सीवेज का और खेती का कीटनाशकों से भरपूर गंदा पानी भी मिला दिया जाता है यमुना में।
62,000 झुग्गियों के 3,50,000 लोग यमुना के किनारे रहते हैं और उन्हें सहारा देने वाली नदी यमुना में ही ये लोग नहा के, कपड़े धो के, अपने जानवरों को नहला के, कूड़ा फेंक के और खुले में मल मूत्र करके उसे गंदा कर रहे हैं।
हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर को जलाकर अस्थियों को पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। यमुना नदी भी इसी मान्यता की शिकार है, पर अस्थियों तक तो ठीक है, आधे जले शरीर को भी लोग इसमें बहा देते हैं।
इंसान तो इंसान, मृत जानवर के शरीर को भी बहा देते हैं, जिससे पानी दूषित होता है और तरह तरह की बीमारी वाले कीटाणु पैदा हो जाते हैं।
एक नदी पर इतना सितम, आखिर ये इंसान चाहता क्या है? उनकी इन सारी हरकतों की वजह से आज यमुना की हालत ऐसी हो गई है कि इसका पानी पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं रहा।
एक समय पर यमुना किनारे दूर देश से पंछी आते थे, उसके किनारे हरे भरे खेत होते थे, आज वहाँ झुग्गियाँ हैं, किनारे गंदे हो चुके हैं। दूसरे देश से आना तो दूर, नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी मरते जा रहे हैं।
तुमने सही कहा अनुराग, आज हमारी यमुना की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। क्यों ना अधिक जानकारी के लिए बात करें एक खास मेहमान से, जिनसे बात कर रही है हमारी सहयोगी समीन।
आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं वी फॉर यमुना के फाउंडर विमलेन डूंझा, जो कि आज हमें हमारी यमुना की बदलती हुई तस्वीर के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है विमलेंदु जी आपका हमारे कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में।
बहुत बहुत धन्यवाद।
तो विमलेंदु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यमुना नदी क्या है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है।
देखिए, यमुना जो है वो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, धार्मिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री में होता है, जो पहाड़ में है, हिमालयस में है, उत्तरांचल में है। कुल दूरी, कुल जो लेंथ है नदी का, वो 1370 किलोमीटर है, 1370 किलोमीटर यमुनोत्री में शुरू होती है और प्रयाग में जाके वो गंगा में जाके मिल जाती है। नदी का जो स्वरूप है वो हर 10 किलोमीटर पर, हर 15 किलोमीटर पर बदलता रहता है, क्योंकि समाज बदलता रहता है, सारी दिशाएं बदलती रहती हैं और उसी तरह नदी भी बदलती आ रही है। तो दो बिंदुए हैं इस पे कि एक तो समय के साथ नदी कैसे बदल रहा है और एक दूसरी की दूरी के साथ कैसे नदी में परिवर्तन हो रहा है, और दोनों बिंदुओं पे विचार करना बहुत ही आवश्यक है। तो नदी का तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से रहा है हमारे हमारे संस्कृति में और हमारे हमारे अस्तित्व में, और आज के डेट में जो है हम सोचते हैं कि हम नदी के ऊपर भरोसे नहीं रहते, हम नलके के भरोसे रहते हैं। तो नदी का जो स्वरूप था वो नलका ने ले लिया है। अगर आप किसी से पूछे कि आपका पानी कहाँ से आता है, तो लोग ये नहीं कहते कि नदी से आता है, वो कहते हैं कि वो नलके से आता होगा, चाहे छत के ऊपर सिंटेक्स से आता है। तो वो जो ह्रास हुआ है हमारी समझ में, वही मेन कारण है नदी के मरने का, कि नदी जो है लोगों के मानसिक पटल से हट गया है, और जिसका इम्पैक्ट है कि आप देख रहे हैं कि नदी ही मिट रही है कंप्लीटली। दूसरे तौर पे अगर हम देखते हैं कि दूरी के अनुसार नदी जब पहाड़ों में है नदी, जब गांवों में है तो नदी पूर्णतः स्वच्छ है और सुंदर है, और जब नदी नीचे आती है जहां, तो अशिक्षित लोगों के साथ जब नदी है तो नदी स्वच्छ है, और जहां ही शिक्षित लोगों के साथ नदी आती है, जहां लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने आते हैं, अच्छा खाना खाने आता है और अंग्रेजी बोलते हैं, वहीं आके नदी काली हो जाती है। तो गांव में लोगों ने कभी वातावरण की कक्षाएं अटेंड नहीं की हैं, लेकिन उनको वातावरण के बारे में बहुत जानकारी है और अपनी नदी की रक्षा करना उनको आता है। और जहां ही शहर में जब हम लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और झोला लटका के घूमते हैं कि हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं और एनवायरमेंट करते हैं, और वहीं आके नदी मृत हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसपे सबों को विचार करना आवश्यक है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षा और जो हम वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, वैल्यू सिस्टम का मतलब सिर्फ विकास होता है क्या, और विकास का सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा पैसा होता है या फिर अपने अपने संसाधनों की रक्षा करना भी होता है। और दिल यमुना के ऊपर वही इम्पैक्ट हुआ है कि हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम विकासशील से विकसित होते जा रहे हैं, उस क्रम में हम अपनी नदी को कम्प्लीटली मारते जा रहे हैं
जी।
और नदी का वही हस्र है।
तो विमलेंडो जी, आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी में यमुना की क्या अहमियत रह गई है?
देखिए, जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने यमुना देखी है, तो 70% लोग कहते हैं कि उन्होंने देखी नहीं है, अगर देखी भी है तो फ्लाईओवर्स के ऊपर से देखी है, क्योंकि वो मयूर विहार जा रहे थे या नोएडा जा रहे थे तो फ्लाईओवर के ऊपर से दिख गया उनको यमुना, तो दिख गया। तो असल में नदी के को देखने के लिए कोई नहीं जाता, नदी को छूने के लिए कोई नहीं जाता, तो नदी हमारे दिनचर्या में नहीं है। साथ ही साथ अगर हम पानी की बात करते हैं तो लगभग 60% पानी तो हमारा नदी से ही आता है, चाहे वो आप सरफेस वाटर कहें या वाटर रिचार्ज भी अगर होता है, तो यमुना ही मेन रिचार्ज सोर्स है हमारा अभी दिल्ली में। लेकिन हम एक मिथ्या में रहते हैं ना, हमें लगता है कि पानी तो कहीं से आता है और कहीं को जाता है, और हमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, हमें लगता है कि पानी तो जमीन जितना भी खोदो तो भी निकल ही जाएगा। तो हम वो जो उस मिथ्या में रहते हैं वो बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए कि पानी कम है। हमारे दो स्रोत हैं पानी के, एक तो है सरफेस वाटर जो यमुना है जो कि काली पड़ गई है और सूख रही है, दूसरा सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर और वो भी काली पड़ रही है, कंटेमिनेट हो रही है और वो भी स्तर उसका नीचे जा रहा है। तो असल में अगर हम अभी एक्शन नहीं लें, अगर हम अभी इसके बारे में ना सोचें, तो हो सकता है 5 साल बाद कुछ नदी ही ना रहे, कुछ पानी ही ना रहे, और बिना पानी के कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कोका कोला में तो सब्जी नहीं बनाएंगे ना, मेन तो यही मुद्दा है कि आप नहाएंगे किससे, आप लिम्का से तो नहीं नहाएंगे, और पानी का की जो आवश्यकता है वो पानी ही पूर्ण कर सकती है, और पानी हम विदेश से तो नहीं उठा के ला सकते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वाटर लिमिटेड है, नदियां जो है इररिपेरेबल होता है कि एक बार जिसको आपने खत्म कर दिया वो फिर वापस नहीं, एक बार ग्राउंड वाटर अगर कंटेमिनेट हो गया तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट मैकेनिज्म जो है उसको साफ नहीं कर सकता है। तो और लोगों को ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम जिस स्तर से आगे बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे जंगल, जमीन और नदी पे कैसा पड़ता है, और वो लोग नहीं समझते हैं आज की तारीख में।
तो विमलेंडो जी, आप हमें बताएंगे कि आज हमारी यमुना किन कारणों की वजह से प्रदूषित होती जा रही है?
देखिए, मेन जो है 3 तरह का वेस्ट है यहाँ पे है। एक तो म्युनिसिपल वेस्ट है, सारे के सारे हमारे सारा जो फ्लश है, सारे हमारे घर का जो कूड़ा है, हमारे घर का जो पानी है वो नदी में इन नालों के माध्यम से जाता है, तो म्युनिसिपल वेस्ट एक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनका अनट्रीटेड सेमी ट्रीटेड वेस्ट केमिकल्स जो है वो नदी में इन सारे नालों के माध्यम से जाता है। और तीसरा है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, किया दिल्ली के आसपास या अपस्ट्रीम में या बाकी जगहों पे जो सारे एग्रीकल्चरल लैंड हैं और उसमें जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं उनका जो रन ऑफ है वो भी नदी के अंदर जाता है। तो 3 मेन सोर्स है, और चौथा है कि लोग जो पुल पे खड़े होके प्लास्टिक बैग नीचे यमुना में गिराते हैं।
आज यमुना में पानी देखने को नहीं मिलता है, पानी सूखता चला जा रहा है, इसके क्या कारण है?
पानी नदी में जो कम है उसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो है कि पानी का जो यूज है, जो साफ पानी पीने लायक पानी है, उसको आप खेतों में यूज कर रहे हैं। ताजे वाला बराज, हथनीकुंड बराज जो अपस्ट्रीम में है, हरियाणा में है, उससे सारा का सारा साफ पानी जो है वो इंडस्ट्रियल, वो एग्रीकल्चरल यूज के लिए, इरिगेशन के लिए चला गया। तो वो समझना कि कौन सा पानी किस कारण से है, किस कारण में यूज होना चाहिए, साफ पानी को अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करें। दूसरा, अगर आप देखें तो दिल्ली में लगभग 40% पानी जो है, जो भी हम पानी नदी से निकालते हैं जिसके कारण नदी के ऊपर बोझ पड़ता है, 40% पानी जो है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे टैंक्स फटे हुए हैं, हमारे पाइप्स फटे हुए हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड अगर पीने के लिए मान लीजिए कि 100 लीटर पानी निकालता है, उसमें से 40 लीटर पानी तो कभी कहीं पहुंचता ही नहीं है। तो वो दूसरा तरीका है मिनिमम फ्लो या फिर नदी के ऊपर बोझ को घटाने का। तीसरा है कि हम कितना पानी यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि अगर हम हर इंसान अगर 4 लीटर पानी तो कम कर ही सकता है, और वो अगर कम हो गया तो कितना पानी हम नदी से निकालते हैं, और कितना कचड़ा पानी हम नदी के अंदर डालते हैं, इस पे हमारा सारा का सारा सारी की सारी बात जो है वो निर्भर करती है। क्योंकि जहां हम बोल रहे हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ क्यूसेक्स पानी निकाला जाता है यमुना से दिल्ली में, तो उसका तो 40% आपका ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो अगर वो नहीं निकाला गया और उसको उस पानी को जो बर्बाद हो रहा है उसको हम डाइल्यूट करने के लिए यूज करें नदी को, तो उसमें नदी को एक जीवन मिलेगी, नदी को एक स्रोत मिलेगा, एक सांस लेने की ताकत मिलेगी।
एक आम व्यक्ति यमुना को बचाने के लिए क्या कर सकता है?
इंडिविजुअल एफर्ट एक है कि आपको अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना है, और दूसरा है कि आपको नागरिक के बदौलत कैसे सरकार पे प्रेशर डालना है। कि हम लोग पैसिव हो गए हैं बहुत, कि कोई आएगा और नदी साफ करके चला जाएगा, कोई बाहर से आएगा या कोई जापान से लोग आएंगे या फिर कोई बिहार से लोग आएंगे या फिर कहीं पंजाब से आएंगे, नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। और सरकार को सही रास्ते पे लाना, क्योंकि सरकार भी हम ही हैं, और सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो उनके ऊपर प्रश्न उठाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। और हम दूसरे ही वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें हम लगता है कि नहीं, सरकार अपने आप कर देगी या फिर ये सब तो खत्म है, ये सब तो खराब है, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो उसको समझना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना और अपनी सिटीजनशिप को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आजकल देखा जाता है कि काफी सारी एनजीओज यमुना नदी को बचाने के लिए काम कर रही है, इसमें आपकी संस्था भी एक है, तो आप लोग क्या करते हैं यमुना को बचाने के लिए?
देखिए, एक एनजीओ जो है सिर्फ शोर मचा सकती है, मेन काम जो है ये सरकार ही कर सकता है। क्योंकि हम बोल रहे हैं नदी के सुधार की बात, हम जाके एक नदी का एक किनारा साफ कर सकते हैं, लेकिन नदी के प्रदूषण के सोर्स को ठीक करना या नदी के गंदे पानी को मशीन के द्वारा साफ करना, वो तो सरकार की ही जिम्मेवारी है।
रिसेंटली आप लोग क्या कर रहे हैं यमुना को बचाने के लिए?
जैसे मैंने कहा कि समाज सेवी संस्थाएं या फिर एनजीओ या हमारे जैसे इंसान सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं या फिर और बहुत ही अलग अलग लोगों को एंगेज कर सकते हैं। तो अभी हमने एक यूथ यात्रा किया था जिसमें 4 देशों से 6-6 लोग आए, और ये सारे लोग नदियों के ऊपर अपने जंगल जमीन के ऊपर अब इन 4 राष्ट्रों में काम करते हैं, इंडिया, यूके, फिनलैंड और श्रीलंका। ये ईयू फंडेड एक प्रोजेक्ट था जिसमें सारे लोग आए और हम लोगों ने 1 महीने तक एक साथ नदी के ऊपर भ्रमण किया, ये देखने के लिए कि हम अपनी नदियों को कैसे रखते हैं और विदेश में नदियों को कैसे लोग रहते हैं। कि अगर हम कहते हैं कि लंदन अच्छी जगह है और हम चाहते हैं दिल्ली भी लंदन जैसी हो जाए, तो लंदन के निवासी कैसे थेम्स की रक्षा करते हैं, और उसको भी समझ बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी था कि अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग संस्कृतियों में कैसे लोग अपनी अपनी संपदाओं की रक्षा करते हैं, अपने अपने एनवायरमेंट की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी था 1 महीने का 24 लोगों का, जिसमें हमने अपने बारे में समझा, अपने नदी के बारे में समझा, उनकी नदी के बारे में समझा। और संस्कृति और वातावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर मींस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और अगर हम वो नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कि एनवायरनमेंट एक प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है, एनवायरनमेंट हैज टू बी अ लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट हैज टू बी अ वेरी वेरी कॉन्शियस डिसीजन ऑफ एवरीवन।
आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
हम यही कहेंगे कि देखिए, सक्सेसफुल होना बहुत ही आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आप सक्सेसफुल नहीं होइए, लेकिन सक्सेसफुल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ही इतना ही आवश्यक है। ये समाज आप ही का है, ये नदी आप ही की है, इसके लिए कोई विदेश से कोई नहीं आएंगे, इसको आप ही ने गंदा किया है इसको, तो इसको साफ करने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। सबसे पहले ऑफकोर्स सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप हर रोज 1 लीटर भी पानी अगर बचाते हैं, तो उसका मतलब है कि 1 लीटर पानी नदी से कम निकाला जाएगा और नदी के ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ेगा। और अगर जान जाइए, 15 मिलियन पॉपुलेशन है दिल्ली का, अगर 15 मिलियन लोग 1-1 लीटर कम पानी निकालें, तो 15 मिलियन लीटर पानी तो हर रोज ऐसे ही बच गया। और नदी पे जो मिनिमम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उसका प्लस ने पॉजिटिव इम्पैक्ट वहीं पे पड़ जाता है। तो वो घर से शुरू करनी है अपनी जर्नी। हम यही लोगों को, श्रोताओं को यही कहेंगे कि अपने घर से काम शुरू कीजिए और अपने आप को नागरिक बनाइए, और इसके बाद एक सक्सेसफुल इंसान।
विमलेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
यमुना की बदलती हालत को देखकर सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं ने अलग अलग अपने स्तर पर और एक साथ मिलकर कुछ करने का निश्चय किया।
सरकार ने बनाया यमुना एक्शन प्लान 1993 में, जिसमें जापान ने 700 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दिए। हरियाणा के 12 शहर, यूपी के 8 और दिल्ली शहर इस परियोजना के अंतर्गत आए।
इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ है एक और खास मेहमान, और हमारे साथ है मनोज मिश्र जी, जो कि यमुना जीए अभियान के कन्वेनर है और जिनसे बात कर रही है हमारी सहयोगी नेहा।
सरकार भी कुछ प्लान्स वगैरह कर रही है इसके लिए, बनाए प्रोजेक्ट्स चलाए, तो आप क्या समझते हैं कितने कारगर हुए हैं वो?
नदी, बहता पानी, फ्लड प्लेन, ये दोनों को मिला के नदी बनती है। नदी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, और जब तक हम इसको एक इकोसिस्टम के रूप में देखकर इसके साथ में इसको साफ करने का या इसके स्वरूप को बचाए रखने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम जो हैं सर्कल्स में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप यमुना एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, और यमुना एक्शन प्लान 1993 से चालू किया गया था, अब अपने फेज टू में है वो, जिसमें कि कहते हैं कि 1400 करोड़ रुपए अल्टीमेटली पूरा का पूरा उसमें खर्च आएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य किए गए हैं, पर जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ नदी में पानी को देख के हुआ है कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना दो, इम्प्रूव्ड टॉयलेट्स फैसिलिटीज बना दो, घाट्स को साफ कर दो, इस तरह की ऑर्नामेंटल बातें तो हुई हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ पानी फिर अगर गंदे नाले में मिल रहा है तो फिर उस पानी को साफ करने का तो कोई औचित्य नहीं बचा। तो कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो प्लानिंग के साथ, पहली बात हम नदी को उसके पूर्ण रूप में नहीं देख रहे हैं, दूसरी बात हम पानी को लेकर जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो अधकचरे प्रयास हैं, क्योंकि हमारा प्लानिंग ही अधकचरा हुआ है। हमारा प्लानिंग आज भी थीम्स नदी को लेकर होता है। थीम्स नदी एक यूरोपियन नदी है। यूरोप में आप इंग्लैंड में जाइए, आप यूरोप में कहीं भी जाइए, हर दूसरे तीसरे दिन पानी पड़ता है, बारिश होती है। हमारी नदियां, हमारी नदी जो है वो मानसून रिवर्स है, क्योंकि आज जो स्थिति है यमुना की, जो ग्लेशियर का पानी आता था वो तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, उसको तो यहाँ से 240 किलोमीटर ऊपर रोक लिया, अलग अलग बांट दिया। तो अब जो पानी यहाँ पर आता है या तो सीवेज आ रहा है या फिर मॉनसून के टाइम में पानी आता है। तो यहाँ जो प्लानिंग होना चाहिए वो अपनी नदी के स्वरूप को देखकर होना चाहिए, ना कि इंग्लैंड में क्या हुआ या जर्मनी में क्या हुआ कि अमेरिका में क्या हो रहा है। भाई उनकी प्लानिंग उनके लिए सही है, हमारी प्लानिंग हमारे तरीके से होनी चाहिए। जिससे देखिए पानी तो एक बहुत बड़ी समस्या आज भी है और भविष्य में और बड़ा होने वाला है। बहुत सारे इसके हल लोगों ने किए हैं, कुछ कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी अपने अपने एक हल है। दूसरा कहते हैं कि भाई अपने फ्लड प्लेन को बचा के रखो, क्योंकि ये फ्लड प्लेन जो एनुअल रिचार्ज करता है वो सब इस ये यमुना नदी का फ्लड प्लेन और ये दिल्ली का रिज, ये दोनों के दोनों बहुत बड़े वाटर रिचार्ज के सोर्स हैं। इसको दिल्ली सरकार, दिल्ली वासी अपना सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स माने, इसको एक वेस्टलैंड और रियल एस्टेट के लिए नहीं माने। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि सामने फ्लड प्लेन दिखता है कि भाई उसमें पानी नहीं बह रहा तो खाली लैंड पड़ा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट वेस्टलैंड, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस लैंड रिसोर्स ऑफ दिस सिटी। तो जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर उसको हम सिक्योरिटी दे देंगे तो हमारे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं पानी की आज भी और फ्यूचर की हल हो सकती हैं।
और आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अब होने?
देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स अगेन फ्रॉम डे वन सिलेक्शन ऑफ दिस साइट इन द रिवर बेड वॉज रॉन्ग फ्रॉम ऑल काउंट्स। हम रिवर बेड की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम ऐसा प्रेसिडेंस सेट कर रहे हैं कि पूरा का पूरा रिवर बेड जो है रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जो लोग वहां रहने आएंगे वो, दिल्ली इज ए फ्लड प्रोन सिटी, वो फ्लड से डेंजर में रहेंगे। एंड वर्स्ट, दिल्ली इज जोन 4 इन द सीजमिक मैप ऑफ इंडिया, और रिवर बेड विद इन दिस जोन इज द मोस्ट वल्नरेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लोग वहां रहने आएंगे उनको हम एक सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, तो दिस इज नेसेसरी। आज भी ये बदल सकता है, कोई देर नहीं हुई है। आज भी देखिए, यमुना जी अभियान कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ नहीं है। दिल्ली में यमुना जी अभियान एक गलत स्टेप को सही करने के लिए है। गलत स्टेप यह है कि आपने एक गलत साइट को गेम्स विलेज के लिए सेलेक्ट किया। प्लीज चेंज इट नाउ।
आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दिल्ली वासियों को या यंगस्टर्स को?
देखिए, मैसेज सिर्फ यह है कि अपनी नदी, योर ओनली रिवर, उसको पहचानो, उसको समझो और उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने लेवल पर आप जो कुछ भी कर सकते हो कृपया करो।
आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, जो आप तक लेकर आ रहा है वन वर्ल्ड साउथ एशिया। और आज हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की बदलती तस्वीर दिल्ली में।
सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जैसे कि फैक्ट्रीज और घरों से निकले गंदे पानी को यमुना में डालने से पहले उसे ज्यादा से ज्यादा साफ करना।
सरकार ने यमुना के किनारे 83 किलोमीटर तक जगह जगह 11 ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं। यमुना को मिट्टी से मटमैला होने से बचाने के लिए लगभग 20,000 पेड़ लगवा चुकी है।
अनुराग, हम चाहे तो हम भी यमुना के लिए कुछ कर सकते हैं।
जैसे कि
गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ यमुना में न बहाए, क्योंकि मूर्तियों पर लगे हैं विषैले रंग जिनमें लीड की मात्रा बहुत होती है।
अरे हाँ स्वाति, ये तो तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। लीड तो एक बहुत ही हैवी मेटल है जो इंसानी शरीर के लिए हानिकारक है। पॉप पानी में आसानी से घुलता नहीं है और नदी को प्रदूषित करता है।
कूड़ा करकट नदी में न डालें और अपने पालतू जानवरों को भी उसमें न नहलाएं। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि यमुना की 1370 किलोमीटर की लंबाई में सिर्फ 2% ही दिल्ली का भाग है, लेकिन फिर भी यमुना 80% गंदी यही होती है।
यानी स्वाति, नदी के पानी की प्रदूषण सीमा से 25 गुना ज्यादा प्रदूषित है यमुना नदी का पानी।
ये आंकड़े सिर्फ इस तरफ इशारा करते हैं कि अगर जल्द ही बहुत बड़े स्तर पर कुछ न किया गया तो
यमुना, जो सूर्य की बेटी है, हमसे नाराज हो जाएगी। यमुना आज बेबस भरी नजरों से हमारी ओर देख रही है, हमें समझना होगा। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप यमुना को साफ सुथरा रखने में जरूर सहयोग देंगे। और हाँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न और सुझाव आते हैं तो आप हमें जरूर लिख सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, केयर ऑफ वन वर्ल्ड साउथ एशिया, C5 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 416-89-000। हमारा एक्सटेंशन नंबर है 116। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है owsa@onewrld.net।
और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
नमस्कार।